नमस्कार, हमारी वेबसाइट की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन की छुट्टी, भारत बनेगा दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में। हमारे पैनल में आज चार लोग मौजूद हैं, जो इस खबर के सिर्फ मेन पॉइंट्स और सबसे जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं।
अगला मेन पॉइंट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर भारत क्या कहते हैं, विदेशी निवेश के नए आंकड़े। दुनिया भर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का ढांचा तेजी से बदल रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब विनिर्माण के लिए केवल एक देश पर निर्भर रहने के बजाय नए सुरक्षित विकल्पों की तलाश कर रही हैं। ऐसे में भारत दुनिया के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से उभरता नजर आ रहा है। अगला मेन पॉइंट है भारत में एफडीआई की भारी उछाल, अंकटाड की रिपोर्ट के सकारात्मक संकेत। भारत के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत विदेशी पूंजी प्रवाह यानी एफडीआई में दर्ज की गई जबरदस्त तेजी है। अंकटाड की 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान भारत में एफडीआई इनफ्लो 44 बढ़कर करीब $39 अरब तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती मजबूती और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।
एकदम सटीक बात। और अगर हम इसके डेटा को देखें तो आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। अगला मेन पॉइंट है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का दबदबा। दक्षिण एशिया क्षेत्र में कुल विदेशी निवेश $34 अरब से बढ़कर $46 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। इस पूरे क्षेत्र में दर्ज की गई तेज वृद्धि की मुख्य प्रेरक शक्ति भारत ही रहा है। अगला मेन पॉइंट है लगातार बढ़ता निर्यात का दायरा, इंजीनियरिंग गुड्स और व्यापार में शानदार वृद्धि। विदेशी निवेश के साथ साथ भारत का मर्चेंडाइज निर्यात आधार भी लगातार विस्तार ले रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल सामान निर्यात मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $437.70 अरब दर्ज किया गया।
बिल्कुल सही कहा। चलिए अब इस खबर के अगले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करते हैं। अगला मेन पॉइंट है इंजीनियरिंग निर्यात में दोहरे अंकों की बढ़त। सरकारी ट्रेड एनालिटिक्स के 2026 के आंकड़ों के मुताबिक इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में उत्साहजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। जनवरी से मई 2026 के दौरान इंजीनियरिंग गुड्स का कुल निर्यात $54.13 अरब दर्ज किया गया, जो बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.87 अधिक है। अगला मेन पॉइंट है ग्लोबल वैल्यू चेन की हकीकत। वियतनाम और चीन से भारत का वर्तमान फासला। वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन ग्लोबल वैल्यू चेन GVC के मामले में वियतनाम और चीन जैसे देशों से अभी भी एक बड़ा अंतर बना हुआ है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत की GVC से जुड़ी व्यापार हिस्सेदारी करीब 40 थी।
एकदम सटीक बात। और अगर हम इसके डेटा को देखें तो आगे की कहानी और भी दिलचस्प है।
अगला मेन पॉइंट है प्रतिद्वंद्वी देशों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण। इसके विपरीत वियतनाम की GVC हिस्सेदारी 63 तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में भारत की भागीदारी पहले से सुधरी है, लेकिन वियतनाम जैसे केंद्रित एक्सपोर्ट हब के स्तर तक पहुंचने के लिए अभी गति तेज करनी होगी। अगला मेन पॉइंट है GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी। विश्व बैंक के आंकड़े क्या बताते हैं? किसी भी देश को दुनिया का कारखाना बनने के लिए उसकी GDP में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विश्व बैंक के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की कुल GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा वर्तमान में करीब 13 है।
एकदम सटीक बात। और अगर हम इसके डेटा को देखें तो आगे की कहानी और भी दिलचस्प है।
अगला मेन पॉइंट है चीन और भारत के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में अंतर। चीन की GDP में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगभग 24 है, जो भारत से करीब 2 गुना है। 2025 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कुल आर्थिक गतिविधि का मूल्य लगभग $533 अरब आका गया। अगला मेन पॉइंट है, चाइना प्लस वन रणनीति विदेशी कंपनियों के लिए भारत कैसे बन रहा है नया विकल्प। कोविड महामारी और भूराजनीतिक तनावों के बाद वैश्विक कंपनियों ने जोखिम कम करने के लिए चाइना एक मॉडल को अपनाया है। इसका उद्देश्य केवल चीन पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों में अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना है। मैं यहां एक बात जोड़ना चाहूंगी, इस अपडेट का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, इसलिए ये मेन पॉइंट बहुत जरूरी है।
अगला मेन पॉइंट है, आसियान और भारत की ओर पूंजी का प्रवाह। अंतैड के अनुसार 2024 में चीन में आने वाले एफडीआई में 29 की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि आसियान एएसईएन देशों में एफडीआई 10 बढ़कर रिकॉर्ड $225 अरब पहुंच गया। कंपनियां चीन को पूरी तरह छोड़ने के बजाय नए वैकल्पिक उत्पादन केंद्र तैयार कर रही हैं। अगला मेन पॉइंट है, पीएलआई स्कीम और सरकारी नीतियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए अहम कदम। केंद्र सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलों के तहत विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
मैं यहां एक बात जोड़ना चाहूंगी, इस अपडेट का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, इसलिए ये मेन पॉइंट बहुत जरूरी है।
तो ये थे इस खबर के सभी मेन पॉइंट्स। हमारी चार लोगों की टीम को उम्मीद है कि आपको ये छोटी और काम की चर्चा पसंद आई होगी। हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।